ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ में बंध के सारे बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ।
शांति। ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सतगुरु बाबा क्यों आए हैं? सतगुरु बाबा आए हैं हम बच्चों की सोई हुई तकदीर जगाने। आज की सारी मुरली है तकदीर। कल बाबा ने कहा बाबा आए हैं बृहस्पति की दशा बिठाने, वो वृक्षपति है। आज बाबा कहे कि मैं आया हूं बच्चों की जो सोई हुई तकदीर है वो जगाने। हमारी तकदीर सो गई थी, सोई हुई थी। किसने सुला दी हमारी तकदीर? माया रावण ने। तो कैसे जगाते हैं बाबा हम बच्चों की तकदीर? बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान और योग सिखाता हूँ, पवित्रता का पाठ पढ़ाता हूँ, और पवित्रता के आधार से फिर और सारे गुण आ जाते हैं, क्योंकि पवित्रता है फाउंडेशन सभी गुणों की। और फिर जब वो गुण आ जाते हैं तो तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ हो जाते हैं, तुम सुखदायी बन जाते हो, तो अवश्य उससे तुम्हारी तकदीर जग जाती है, है ना? तकदीर जगाने आए हैं तो कैसे जगाते हैं तकदीर? क्योंकि अभी तो सबकी तकदीर सोई हुई है, सब नरक में पड़े हैं, सब दुखी हैं। परमात्मा को पुकारते हैं तो बाबा आकर हम बच्चों की तकदीर जगाते हैं। और जब तकदीर जग जाती है हम बच्चों की तो हम कैसे बन जाते हैं वो आज बाबा ने बताया। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 13/8/2026 है। मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। याद रखें बाबा क्यों आए हैं। आवाज सुनाई नहीं दे रहा आपको? मैं इनको सुनाई नहीं दे रहा है, पीछे वालों को सुनाई नहीं दे रहा है? आवाज थोड़ा बड़ा है ना? नहीं आवाज गूंजता है। तो बाबा क्यों आए हैं हम बच्चों की तकदीर जगाने। अभी सुनाई दे रहा है? अभी ठीक है। अच्छा, तो कैसे तकदीर जगती है हम बच्चों की? ज्ञान और योग से। तो जैसे बाबा से हम ज्ञान लेते हैं, बाबा से योग लगाते हैं, तो उससे हम पवित्र बनते हैं। और पवित्रता ही फिर बाबा कहते हैं सुख शांति की जननी है। तो पवित्र बनने से सब दैवी गुण आ जाते हैं, जिससे तुम्हारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं, और कर्म श्रेष्ठ होते हैं तो तकदीर जग गई। तो ये कैसे बाबा तकदीर जगाते हैं वो आज बाबा ने का सुनाया है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी और कोई उपाय नहीं। पवित्र नहीं बनेंगे तो तकदीर सोई हुई रहेगी। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। प्रश्न है जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है, अब जग गई तकदीर, पवित्र बने हैं तो तकदीर जग गई है, परंतु जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? कैसे पता चले कि हमारी तकदीर जगी हुई है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे सुख के देवता होंगे, क्योंकि दुख देने से दुख मिलता है, दुख देने से पाप बनते हैं, तो फिर पाप बने तो फिर उसकी सजा मिलती है, तो तकदीर सो जाती है। तो वे सुख के देवता होंगे, बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे, खुद तो सुख लेंगे लेकिन बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर फिर औरों को भी देंगे सुख। कभी भी किसी को वो दुख नहीं दे सकते, जिनकी तकदीर जगी हुई है वो कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। वो है व्यास के बच्चे सच्चे सच्चे सुखदेव। शिव बाबा को व्यास भी कहेंगे, व्यास माना टीचर, वैसे लौकिक में व्यास की गद्दी माना शिक्षक की गद्दी, गुरु की गद्दी, तो उनको व्यास कहते हैं जो ज्ञान देते हैं। तो शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वो सच्चा व्यास है, और हम उनके बच्चे फिर सुखदेव बन जाते हैं, सबको सुख देते हैं। वो है व्यास के बच्चे सच्चे सच्चे सुखदेव। अब दूसरी क्या निशानी होगी जो जिनकी तकदीर जगी हुई है? वो पांच विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी राज ऋषि कहलाते हैं। तो तकदीर जग गई तो राज ऋषि कहलाते हैं, पांच विकारों का संन्यास किया है। तीसरी निशानी, उनकी अवस्था एक रस रहती है, उन्हें किसी भी बात में रोना आ नहीं सकता है, कभी रोएंगे नहीं, क्योंकि कहा जाता है ना, जिन रोया तिन खोया, तो उनकी तकदीर सो जाती है जो रोते हैं। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता, उनके लिए कहते हैं मोहजीत। जो मोहजीत होते हैं वो रोते नहीं है। गीत है तकदीर पर, कौन सा गीत होगा? तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, बना कर लाई हूँ। ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तकदीर जग गई तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो ये कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। तो मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। दुखी रहना माना जैसे तकदीर सोई हुई है, सबकी तकदीर सोई हुई है। सतयुग में सबकी तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है, बस वही सबकी तकदीर बनाते हैं, वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। तो बाबा मिसाल देते हैं कैसे तकदीर जगती है। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं ना, किसको बच्चा पैदा होता है तो कहेंगे उसकी तकदीर जग गई। अगर वो धनवान के घर में राजा के घर में पैदा होता है वो राजा बनेगा, इतना धनवान बनेगा, मानो जैसे उसकी तकदीर जग गई। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और उनकी तकदीर जग जाती है, बच्चा जन्मा और उनको ये पता चल जाता है कि हम वारिस हैं, हूबहू यह बेहद की बात है। थोड़ा बच्चा समझदार हो जाता है तो वो समझता है ना, मैं अपने पिता का वारिस हूँ, ये सारा धन मेरे नाम पर होगा। हूबहू ये बेहद की बात है, बाबा के बच्चे बने तो जैसे वारिस हो गए, वारिस होना माना वर्षे का अधिकारी माना तकदीर जगना। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है, और फिर क्या होता है, संगम पर तकदीर जगती है, फिर क्या होता है, फिर सो जाती है, तकदीर सो जाती है। द्वापुर से रावण की प्रवेशता होने से तकदीर सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है, फिर पतित बने तो तकदीर सो जाती है। पावन ग्रस्त आश्रम कहा जाता है, आश्रम अक्षर पवित्र होता है, पवित्र गृहस्थ आश्रम, और उसके विरुद्ध क्या है, अपवित्र गृहस्थ धर्म। अभी जो दुनिया में है अभी है अपवित्र गृहस्थ धर्म, आश्रम नहीं है क्योंकि पवित्रता नहीं है, तो चलो ग्रस्त धर्म है, समझते हमारा तो ग्रस्त धर्म है, शादी की बच्चे पैदा किए तो ग्रस्त धर्म हम पालन कर रहे हैं। तो आश्रम अक्षर पवित्र होता है, पवित्र गृहस्थ आश्रम, फिर उनके अगेंस्ट है अपवित्र पतित धर्म, अपवित्र पतित ग्रस्त धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे, ग्रस्त धर्म तो सबका है, जानवरों का भी है, है ना, वो भी तो बच्चे पैदा करते हैं ना, जानवर भी, तो उनका भी तो ग्रस्त धर्म है, जानवरों का भी है, बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे ग्रस्त धर्म में है जब उनके बच्चे होते हैं। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे, उन्हों की महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, तुम खुद भी गाते थे, हाँ सब गाते थे, मंदिरों में जाकर लक्ष्मी नारायण के आगे ये महिमा सब गाते हैं। अभी समझते हो हम मनुष्य से सो देवता फिर से बन रहे हैं, देवी देवताओं का धर्म है, देवता बन रहे हैं पर देवताएं कौन है, उनका धर्म है। हाँ, जैसे एक धर्म होता है वैसे देवताओं का भी धर्म है। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे, ब्रह्मा देवताई नमे, विष्णु देवताई नमे। फिर शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माए नमः, शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, शंकर देवता कहेंगे, पर शिव के लिए कहेंगे हाँ शिव परमात्माए नमः। तो फर्क हुआ ना, ब्रह्मा विष्णु और शिव में फर्क हुआ। शंकर को फिर कह देते हैं महादेव, देव देव महादेव, तो बाबा कहते हैं तो फर्क हुआ ना, शिव और शंकर तो एक कह नहीं सकते, पत्थर बुद्धि थे अब पारस बुद्धि बन रहे हैं, पत्थर बुद्धि थे तो शिव शंकर एक समझ लिया, शिव को भी महादेव कह दिया, शंकर को तो कह दिया, तो एक दो के ऊपर देव ब्रह्मा देव, फिर विष्णु भी देव, तो शंकर फिर महादेव। तो बाबा कहते महादेव चलो ठीक है, पर देवों का देव वो तो शिव बाबा है ना। बाबा कहते शिव और शंकर को एक तो कह नहीं सकते, पत्थर बुद्धि थे अब पारस बुद्धि बन रहे हैं, देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा प्लान अनुसार पत्थर बुद्धि कैसे बनते हैं वो भी, ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने से उन्हों को भी सीढ़ी उतरनी है, पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है, तो देवताएं पारस बुद्धि थे, धीरे धीरे वो भी उतरते हैं, फिर रावण के वश होते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। सबसे बुद्धिवान बनाने वाला तो एक बाप है। तो आते हैं, तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। सब यहाँ क्यों आए हैं? पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ का भी मंदिर है, वहाँ मेला लगता है, परंतु ये किसको पता नहीं है कि पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो एक बाप ही है। सच्चा पारसनाथ तो एक बाप ही है, वही सबको पारस बुद्धि बनाता है। वो है बुद्धिवानों की बुद्धि, ये है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। तो पारसनाथ आके पारस बुद्धि कैसे बनाते हैं? हम बच्चों के लिए बुद्धि की खुराक देते हैं। बुद्धि कितना पलटती है, पहले क्या सोचते थे रवि क्या सोचते थे, बुद्धि एकदम पलट गई। पत्थर बुद्धि से जैसे पारस बुद्धि बने, बुद्धि कितना पलटती है। जैसे गाया जाता है ना, सी नो ईविल टॉक नो ईविल, अब ये बंदरों की तो बात ही नहीं है, मनुष्य ही जैसे बंदर मिसल बन जाते हैं। एप्स, एप्स का क्योंकि वो क्या कहते हैं ना, डार्विन थियरी है जिसमें उसने कहा बंदर से मनुष्य बने, तो एप्स है, वो एप्स को दिखाते हैं, बंदर शक्ल बंदर की है परंतु चलते हैं दो पैरों पर, ऐसे दिखाते हैं, वन मानव। तो उनकी मनुष्य से भेंट की जाती है। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल, कितना एक दो को दुख देते रहते हैं। तो अभी क्या बन गए हैं, सब बंदर मिसल बन गए हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। कौन सी खुराक? ये पढ़ाई पढ़ाना माना जैसे बुद्धि को खुराक देना, ये पढ़ाई है। इसको फिर ज्ञान अमृत भी कहते हैं, खुराक भी है तो ज्ञान अमृत भी है। अब ये कोई जल आदि की बात नहीं है, कोई जल केवल नहीं पिलाते, सतगुरुवार के दिन जल पिलाते हैं, परंतु सच्ची खुराक तो ज्ञान की खुराक है, कोई जल आदि नहीं। आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं, गंगा जल को भी अमृत कहते हैं, देवताओं के पैर धोकर पीते हैं, पानी रखते हैं, हाँ चरणामृत कहते हैं उनको, उसको तो पानी रखते हैं, उनको भी अमृत की अंचली समझते हैं। वो देते हैं ना, वो जो उनकी जो चम्मच होता है वो भी कैसा छोटा होता था कि केवल अंचली भरे, केवल ये उस हाथ पर ही लगे बस, तो उनको भी अंचली समझते हैं। अंचली जो लेते हैं उसको ऐसे नहीं कहेंगे, चलो अंजलि लेते हैं हाथ में, पर उसको ऐसे नहीं कहेंगे ये पतितों को पावन बनाने वाला है। वो अंजलि से पिया तो जैसे पावन हो गए, ऐसे तो नहीं कहेंगे। गंगा जल के लिए तो कहते हैं पतित पावन ही है, कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया, तो महाभारत में दिखाते हैं कि जब भीष्म पितामह शैया पर लेते थे, वो बाणों की शैया पर अर्जुन उनसे मिलने के लिए गया, तो अर्जुन को उसने कहा मुझे प्यास लगी है, तो अर्जुन ने क्या किया, तीर मारा धरती में और वहां से जल निकल आया, तो कहा ये गंगा जल है। तो मरने से पहले जैसे गंगा जल उनको मुख में देते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। एक गांव है जहां बाणों से लड़ाई करते हैं, होगा कोई एक गांव किसी अफ्रीका के किसी स्थान में होगा, क्योंकि अफ्रीका में तो बहुत ऐसे स्थान हैं, तो बिल्कुल एकदम आदिवासी में भी ऐसे। तो एक गांव है जहां बाणों से लड़ाई करते हैं, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। तो बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के गुरु है, सच्चा सच्चा सतगुरु तो एक ही है, सर्व का सदगति दाता एक है, जो सबको साथ ले जाते हैं, बाप के सिवाय वापस कोई ले नहीं जा सकता, कोई नहीं ले जा सकता है वापस बाप के सिवाय। ब्रह्म में लीन हो जाने की तो बात ही नहीं है, ये नाटक बना हुआ है। कोई कहे फलाना साधु महात्मा ये ब्रह्म लीन हो गया, बाबा कहते कोई ब्रह्म लीन नहीं होता, क्योंकि वापस ले जाने वाला जब तक आए नहीं, वो न ले जाए तब तक कैसे कोई जा सकता है। तो बाबा कहते ये नाटक बना हुआ है, जो चक्र अनादि फिरता ही रहता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये अभी तुम जानते हो। मनुष्य अर्थात आत्माएं, तो जो हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ड्रामा रिपीट होता है, तो कल्प पहले जिन्होंने पार्ट बजाया था वो इस कल्प में भी बजाएंगे, तो ब्रह्मलीन में ब्रह्मलीन कैसे होंगे। तो मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचयिता को भी नहीं जानती, जिसको याद भी करते हैं ओ गॉड फादर। हद के बाप को तो कभी गॉड द फादर नहीं कहेंगे, हद का बाप को फादर कहेंगे, पर गॉड द फादर तो नहीं कहेंगे ना। गॉड फादर अक्षर बहुत अदब से कहते हैं, बड़ी इज्जत से कहते हैं भगवान के लिए, बड़ी इज्जत से अदब से कहते हैं, उनके लिए ही कहते हैं। वो पतित पावन दुख हरता सुख करता है, एक तरफ कहते हैं वो दुख हरता सुख करता है, और फिर क्या कहते हैं, फिर कोई दुख होता है वह बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते हैं ईश्वरी सुख दुख देता है, भगवान ने मेरा बच्चा ले लिया, दुखी हो गया, भगवान ने दुख दिया। अब एक तरफ बाबा कहते हैं, वो कहते हैं सुख दाता है दुख हरता है, फिर भगवान ने कैसे दुख दिया। तो फिर कह देते ईश्वरी सुख दुख देता है, ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया भगवान ने। ईश्वर को फिर गालियां देते हैं, कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया, अच्छा फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो, जिसकी अमानत है उसने ले ली वापस तो तुम रोते क्यों हो। ईश्वर के पास गया ना, सत्युग में कब कोई रोते नहीं है। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार ही नहीं है, आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर पाठ बजाना है। ज्ञान ये न होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, है ना, बहुत रोते हैं, जैसे पागल भी हो जाते हैं। कई माताएं बेटा मर गया इतनी पागल हो जाती है, पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, इसका मतलब दुख नहीं करना, बाप मरे तो भी हलवा खाना, कोई भी शरीर छोड़े रोना नहीं है। हाँ तो कई कहते हैं ना, देखिए ब्रह्मा कुमारियां चाहे कितना भी प्यारो पर ये रोते नहीं है, बहुत शक्तिशाली है। बाप मरे तो भी हलवा खाना तो नष्टो मोहा होना है, हमारा तो एक ही बेहद का बाप है दूसरा न कोई, ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। हाँ मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना, सत्युग में कभी दुख की बात नहीं होती और न कभी अकाल मृत्यु होती है। यहाँ दुख क्यों होता है, क्योंकि जवानी में चला जाता है बच्चा, अब पिता बैठा है और बच्चा मर गया, तो पिता को तो दुख होगा, माँ को दुख होगा। तो बाबा कहते सतयुग में तो ऐसे होगा ही नहीं कि पिता बैठे बच्चा चला जाए, तो वहां कभी अकाली मृत्यु होती नहीं। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं, काल माना मृत्यु, तो हम मृत्यु पर जीत पाते हैं। स्वेच्छा से आत्मा शरीर छोड़ती है। अब ये शरीर बूढ़ा हो गया है, तमो प्रधान शरीर तो होगा ही, प्रकृति की चीज है। तो बाबा कहते हैं फिर वो स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। बच्चे जानते हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं, कालों का काल महाकाल। तुमको काल पर जीत पानी है, अर्थात काल पर जीत पानी है का मतलब ये नहीं कि शरीर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन काल पर जीत पाना माना माना काल कब खाता नहीं है, अर्थात अकाल मृत्यु नहीं होती है, ये है काल पर जीत पाना। काल न आत्मा को न शरीर को खा सकता है। हाँ, कोई काल कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो कोई खा जाएगा। काल माना मृत्यु, काल शब्द ही अर्थ है मृत्यु या तो समय। समय को भी काल कहते हैं, मृत्यु को भी काल कहते हैं। तो काल न आत्मा को न शरीर को खा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है जो खा जाएगा। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम, ये बहुत छंद गाते हैं भक्ति मार्ग में। तो बाबा कहते गाते तो रहते हैं, पर बाप समझाते हैं ये पांच विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। उस समय कोई भी बाप को, इस समय कोई भी बाप को जानते नहीं है, इसलिए इनको ऑर्फन की दुनिया कहेंगे, अनाथों की दुनिया, क्योंकि पिता को जानते नहीं। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना, कहते ना भगवान ने रची, तो ये भगवान का घर है, बाबा ने रची। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन भी थे ना, गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार। तो बाबा कहते वहां तो धर्म का उपकार था, फिर वह अधर्म की बात कैसे हो सकती है। कौन सी अधर्म की बात सुनाते हैं कि रावण सीता को ले गया, चुरा के ले गया, तो फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती है। कहते भी हैं वहां शेर बकरी इकट्ठा जल पीते हैं राम राज्य में, फिर वहां रावण आदि कहां से आया। समझते नहीं है, बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। आप दूसरे धर्म वाले हंसते हैं हिंदुओं पर, कहते कैसा है, कैसे इनके भगवान है, एक इनका ऐसा भगवान है जो औरों की स्त्रियां चुराता था, श्री कृष्ण के लिए कहते ना भगाया, और ये दूसरा भगवान उनका कैसा जिसकी अपनी स्त्री चुराई गई। तो देखो राम के लिए कहेंगे उसकी स्त्री चुराई गई, और कृष्ण के लिए कहेंगे उसने अनेक और स्त्रियों को चुराया, तो देखो चोर है क्या। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते फिर वो हंसते हैं, अभी तुम बच्चों को तो बाहर वाले फिर ऐसे सुनकर हंसते हैं। बाप आकर ज्ञान देते हैं कि ये पतित दुनिया है ना, अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ, तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने। क्यों आया हूँ, तुमको अपने समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने। बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे, टीचर, सच्चा टीचर, सच्चा गुरु। तो ये व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुखदेव, तुम अभी सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास शिवाचार्य से। टीचर है ना वो, तो शिवाचार्य व्यास से तुम सुख का वर्षा ले रहे हो, वो बाप भी है, व्यास के बच्चे तुम हो। परंतु मनुष्य मूझ न जाए इसीलिए कहा जाता है शिव के बच्चे, नहीं तो कहेंगे व्यास के बच्चे। सच्चा व्यास तो शिव बाबा ज्ञान का सागर है। शिव के बच्चे इसलिए कहते हैं, उनका असुल नाम है शिव। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है, उनको जानते हैं शिव बाबा, अपना परिचय खुद देते हैं तो हम उनको जान जाते हैं। वही आकर पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताते हैं, कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। कहते हैं अंगुष्ठे मिसल है, परमात्मा को अंगुष्ठे मिसल, ज्योतिर्लिंगम भी जो बनाते हैं या शालिग्राम भी जो बनाते हैं वो अंगुष्ठे मिसल बनाते हैं। कहते हैं अंगुष्ठे मिसल है, अब इतना बड़ा तो यहाँ ठहर भी न सके, भ्रिकुटी के बीच में इतना बड़ा कैसे ठहरेगा, वो तो बहुत सूक्ष्म है। डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु देख नहीं सकते। आत्मा को देखा नहीं जाता है, लेकिन क्या किया जाता है, रियलाइज किया जाता है, महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है, इन आँखों से नहीं देखा जाता है। तो बाप पूछते हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया, किया सबने आत्मा को रियलाइज, पहचाना अपने आप को, हाँ कहो ना, हाँ हाथ उठाओ, हाँ बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं, बाबा पूछते हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया, इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बने हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है, उनका एंड ही नहीं होता। 84 जन्म पूरा हुआ फिर रिकॉर्ड चालू हो जाता, एंड ही नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं ड्रामा के बारे में, पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु ये तो अनादि है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कुछ करोड़ों साल पहले शुरू हुआ ड्रामा, नहीं, ये तो अनादि है, ये कभी विनाश भी नहीं होता है। अच्छा कब पूरा होगा वो भी नहीं, कब शुरू हुआ वो भी नहीं, क्योंकि जो चीज शुरू होती है वो पूरी भी होती है, पर जो शुरू ही नहीं हुई तो पूरी कैसे होगी। तो कभी विनाश भी नहीं होता। इनको कहा ही जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। वर्ल्ड को भी तुम जानते हो, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है ऐसे बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, उस बेचारे को तो लिखना पढ़ना तो आता नहीं है, बच्चे को कहाँ आएगा, तो पढ़ाते ना, ऐसे ए लिखते हैं, ऐसे बी लिखते हैं। तो ये भी हम भी अनपढ़ थे इस ज्ञान में, तो बाबा ने आके पढ़ाया है। ऐसे बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है। ये है अभी आत्मा जो पढ़ रही है, ये क्या है, ये है पत्थर बुद्धि के लिए फूड, भोजन, ये ज्ञान, क्योंकि कुछ भी नहीं जानते थे, अनपढ़ थे जैसे इस ज्ञान में, तो ये अनपढ़ को पढ़ाया जाता है, ये भोजन दिया जाता है, ज्ञान का भोजन। बुद्धि को समझ मिलती है, तुम बच्चों के लिए ही बाबा ने चित्र बनवाए हैं, है तो बहुत सहज, ज्ञान मुश्किल तो है नहीं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं, चार मुख भी दिखाते हैं, तीन मुख भी दिखाते हैं, अभी उस दिन हमने कहाँ देखा, पांच मुख, ब्रह्मा को पांच मुख भी दिखाते, एक ऊपर से छोटा सा मुख। तो बाबा कहते हैं ये क्यों कहते हैं, फिर कहेंगे देव देव महादेव, एक दो के ऊपर रखते हैं, ब्रह्मा देव, फिर विष्णु उनके ऊपर, फिर उनके ऊपर शंकर, तो देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता है? हाँ, जबकि अब ब्रह्मा कैसे हो सकता है? अब उसको फरिश्ता भी दिखाते हैं, फिर सृष्टि पर भी दिखाते हैं। जबकि ब्रह्मा को प्रजा पिता कहा जाता है, तो सूक्ष्म वतन में वो देवता कैसे हो सकता है? वो तो इस मनुष्य सृष्टि पर है, दाढ़ी मूछ तो इस सृष्टि पर ही होती है, देवताओं को तो कोई दाढ़ी मूछ तो होती नहीं है। तो फिर बाबा कहते हैं वो तो इस सृष्टि पर होता है, तो सूक्ष्म वतन में वो देवता कैसे हो सकता है? दाढ़ी मूछ वाला उनको दिखाते ना बादलों के बीच में, ब्रह्मा विष्णु शंकर, कैसे हो सकता है? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए, ये बातें कोई भी शास्त्रों में है नहीं। तो बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इनके द्वारा तुमको समझाता हूँ और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, इनको अपना रथ बनाता हूँ, इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। ये भी पांच विकारों का सन्यास करते हैं। बाबा भी ग्रस्ती थे ना, तो बाबा ब्रह्मा बाबा ने भी तो पांच विकारों का सन्यास किया। सन्यास करने वाले को योगी या ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो, वो सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, वहां तो यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं। जो राज ऋषि होते हैं वो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, वो जो ऋषि लोग होते हैं वो तो सन्यासी बन जाते हैं। फिर यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, कहते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, मूल बात है ही विकार की। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वो नई रचना रचते हैं, वो बीज रूप है, सत चित आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। स्थापना पालना विनाश ये कैसे करते हैं ये बाप ही जानते हैं, इन बातों को मनुष्य तो जानते नहीं। कैसे स्थापना पालना विनाश करते बाबा कहते हैं ये बाप ही जानते हैं, मनुष्य नहीं जानते। इसलिए कितने उनके अनेक मते हैं इसके बारे में, कैसे सृष्टि बनी, कैसे क्या होता है, तो अनेक मते हैं। तुम बच्चे अभी इन सब बातों को जानते हो, इसलिए तुम सबको समझा सकते हो। सब समझा सकते ना हम, तो बाबा कहते हैं क्योंकि तुमने समझी है, सब जान लिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। इसके पीछे मम्मा की भी एक छोटी मुरली है, वो भी सुनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, सबका हिसाब किताब अपना अपना है। इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा न कोई, रोना नहीं है। दूसरा, पांच विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है, सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। कैसे किसको हम दुख पहुंचाते कई बार पता ही नहीं चलता, ऐसा कोई शब्द बोल दिया उसको पिंच हो गया तो जैसे दुख मिला ना, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता अपने शब्दों पर हम क्या बोल रहे हैं। तो बाबा कहते कभी किसी को दुख नहीं देना है। वरदान, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले, केयर करना माना ध्यान रखना, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। सदा ध्यान रखना कि मैं मर्यादा की लकीर के अंदर रहूं। अगर मर्यादा की लकीर से बाहर गए तो रावण रूपी वो असुर ले जाएगा सीता को। जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं के लकीर के अंदर रहते हैं, मैं राम की सच्ची सीता हूँ ये समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात ये केयर करते हैं, ये ध्यान देते हैं कि कहीं लकीर का उल्लंघन न करूं, अर्थात ये केयर करते हैं, वो केयरफुल और फिर केयरफुल सो चीयरफुल। अगर मर्यादाओं की लकीर के अंदर है उसका पूरा ध्यान रखते हैं तो फिर चीयरफुल बन जाते हैं, क्योंकि ध्यान रखा केयर किया तो फिर चीयरफुल स्वतः रहते हैं। तो सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई है उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो। मैं सच्ची सीता हूँ मर्यादाओं के अंदर रहने वाली, लकीर के अंदर रहो तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। जो मर्यादाओं की लकीर के अंदर रह करके हर कर्म करता वही मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है। स्लोगन, सेवा की अति में नहीं जाओ। क्यों बाबा कहते हैं सेवा की अति में नहीं जाओ? क्योंकि सेवा 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 वो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं रहता कि मुझे अपनी अवस्था भी बनानी है, फिर सेवा करते करते फिर अभिमान आ जाता है, फिर दुख देते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। बैलेंस रखोगे तो बाबा कहते हैं ब्लेसिंग मिलती है। सेवा के अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। अब मातेश्वरी जी की छोटी मुरली है, अखंड ज्योति तत्व साइलेंस लॉज और साकारी दुनिया प्लेग्राउंड। लॉज होती है ना, लॉज में रहना भी होता है, खाना पीना सब होता है, तो लॉज और फिर प्लेग्राउंड। तो लॉज में तो रहते हैं और प्लेग्राउंड में खेलते हैं। तो अखंड ज्योति तत्व जो परम धाम है वो हमारा लॉज है, माना वहां रहने का स्थान है, और साकारी दुनिया प्लेग्राउंड है, खेलने का स्थान है। आत्माओं का निवास स्थान है अखंड ज्योति महतत्व, जहां इस शरीर के पार्ट से मुक्त है, अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में है। हाँ, मम्मा की जो मुरली चलती है एक ही पॉइंट, तो अभी एक ही पॉइंट पर मम्मा की मुरली है। जिसको साइलेंस लॉज भी कहते हैं, साइलेंस लॉज, और आत्माओं का शरीर सहित पाठ बजाने का स्थान ये प्लेग्राउंड, ये साकारी दुनिया है, ये प्लेग्राउंड है, खेलने का स्थान और वो रहने का स्थान। तो मुख्य दो दुनियाएं हैं, एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है साकारी दुनिया। दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि परमात्मा रचयिता है, पालन करता है और संहार करता है, वही खिलाता है, वही मारता है, वही जलवाता भी वही है, सब कुछ वही करता है परमात्मा, तो दुख सुख भी वही देता है, ऐसे समझते हैं। जब कोई को दुख आता है तो फिर क्या कहते हैं, प्रभु तेरा भाणा मीठा लागे। भगवान तुमने ही दुख दिया पर तुमने जो कुछ दिया है वो मीठा लगता है, तेरा भाणा मीठा लागे। अब ये है अर्थ, ये है अयथार्थ ज्ञान कि तेरा भाणा मीठा लागे, चाहे दुख दो चाहे सुख दो, तुम्हारा सब कुछ हमको मीठा लगता। बाबा कहते ये अयथार्थ ज्ञान है, चाहे दुख दो, भगवान दुख तो देता ही नहीं है, तो ऐसे थोड़ी कि दुख भी दिया तो भी मीठा लागे, वो तो दुख देता ही नहीं है। तो ये अयथार्थ ज्ञान हुआ, क्योंकि ये कोई परमात्मा का काम नहीं है, दुख देना परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा तो दुख हरता सुख करता है, दुख करता नहीं है, वो दुख हरता है दुख करता नहीं है। जन्म लेना जन्म छोड़ना, दुख सुख भोगना हरेक मनुष्य आत्मा के संस्कार हैं। शारीरिक जन्म देने वाला मात पिता है, वो भी कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे के संबंध में आते हैं। कोई बेटा बना तो ये कर्म के अनुसार उसका बेटा बना, तो कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे के संबंध में आते हैं। इसी रीति आत्माओं का पिता फिर परमात्मा बाप है, वो कैसे बेहद रचना की स्थापना पालना करते हैं, कैसे वो अपने तीन रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है, फिर इन आकारी रूपधारी द्वारा दैवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश और फिर दैवी दुनिया की पालना करवाते हैं। परमात्मा के ये तीन काम बेहद के हैं, हद के नहीं है। बाकी ये दुख सुख जन्म मरण कर्मों अनुसार होता है। परमात्मा तो है ही सुखदाता, वो कोई अपने बच्चों को दुख नहीं देता। अच्छा, ओम शांति। हाँ, ये मम्मा की छोटी मुरली थी, ये अव्यक्त इशारे। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके लिए क्या करना है? संपूर्ण पवित्रता अर्थात मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी न हो। किसको कहेंगे संपूर्ण पवित्रता? मनसा में भी किसी एक विकार का अंश भी न हो। ज्ञान गुण और सर्व शक्तियों की प्राप्ति में सदा संपन्न, सर्व प्राप्तियों के लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई दे। कौन सा क्राउन? सर्व प्राप्तियों के लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई दे। स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप में अनुभव करे। दोनों प्रकार की लाइट, आत्मा की लाइट माना प्रकाश और हल्कापन, तो स्वयं को सदा लाइट आत्मिक रूप में अनुभव करे। कर्म में भी अपने को लाइट यानी हल्का महसूस करे, तब कहेंगे सच्चा पवित्र। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब बाबा को भोग लगाएंगे। शशि बहन जी आ रहे हैं। मैंने सुना पीस पार्क में भी भट्टी चल रही है, जो पीस पार्क से आए हैं भट्टी से वो हाथ उठाएं। अच्छा, अहमदाबाद से पीस पार्क में भट्टी कर रहे हैं, तो आज मधुबन पांडव भवन में आए। और जो नीचे से आए हैं वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, बाकी भट्टी वाले भी बहुत आए हैं, तो आप सबका नाश्ता दिन का भोजन सब ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में है, वहीं जाएंगे। ओम शांत। ओम शांति। आज सतगुरुवार है। प्यारे प्यारे बाबा का दिन, सतगुरुवार के दिन बाबा की यादें, बाबा का प्यार, बाबा के साथ की रूहान बच्चों को बहुत अच्छे अनुभव कराती हैं। बाबा भी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। बाबा कहते हैं आज के दिन तो विशेष लाड प्यार बहुत बहुत सी रूहान के बाबा उनको अनुभव कराते रहते हैं। तो आज के दिन हम सब अमृत वेले से ही प्यारे बाबा से मीठी मीठी बातें करते हैं और बाबा भी बच्चों की रूहान को सुन करके मुस्कुराते भी हैं और विशेष अनुभव कराते हैं। तो आज हमारे सामने बहुत से भाई बहने बट्टी के आए हुए हैं। जो बट्टी के आए हुए भाई बहने वो हाथ खड़ा करें, कहीं से भी, चाहे दिल्ली है, चाहे अन्य स्थान है, चाहे गुजरात है, सब हाथ खड़ा करो। टीचर्स बहने क्यों नहीं कर रही बट्टी के? टीचर्स बहने भी हाथ खड़ा करें। अच्छा, आज वतन में कौन जाएगा बाबा के पास? कोई जाएगा कि नहीं? सब जाएंगे, बट्टी वाले जाएंगे या बाकी भी जाएंगे? जो शांतिवन से आए वो जाएंगे कि नहीं? खास आए हैं शांतिवन से, भोग लगाने के लिए आए हैं, कोई तो जन्मदिन के लिए आया है, कोई बाबा से मीठी मीठी बातें करने के लिए आए हैं, कई तो बट्टी के भाई बहनों ने अपनी बहुत सी प्यार भरी याद प्यार दिया है। तो अभी हम सब मिल करके वतन में जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे और उसके बाद 5 लाइन में अमृत होगा। 1 लाइन होगी भाइयों की, वो जो स्टैंड आप देख रहे हैं ना उस तरफ होगी और वहां पर बड़ौदा की पूनम बहन अमृत पिलाएगी और दूसरी लाइन होगी यहाँ बट्टी के भाई हाथ खड़ा करें। बट्टी के भाई यहाँ बीच में आएंगे अमृत पीने के लिए और तीसरी लाइन होगी बट्टी की टीचर्स बहने हाथ खड़ा करें। सभी टीचर्स आएंगे यहाँ पर इस कैमरा के पास। फिर उसके बाद जो है 2 लाइनें होंगी अन्य बहनों की, टीचर्स बहनों के बाद फिर बट्टी की बहनें भी लाइन के पीछे लगेंगी। लेकिन आज के दिन बहुत प्यार से आराम से 5 मिनट में ही सबको अमृत मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं आज तो बाबा ने ज्ञान का अमृत भी पिलाया, इसलिए सबको इस बात का ध्यान रखना है। सारे इकट्ठे खड़े नहीं होंगे, लाइन में ही आएंगे, थोड़े थोड़े करके आएंगे और प्यारे बाबा की याद में अमृत स्वीकार करेंगे। फिर से हम आपको बता रहे हैं, अभी हम सभी चलते हैं वतन की ओर, बाबा के पास बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे और उसके बाद 5 लाइन में अमृत होगा। ओम शांति।
पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योति
गाती है तेरी। पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद।
ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के साथ, जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते ही क्या देखती हूं, एक तरफ तो लाइट की बहुत सुंदर डेकोरेशन दिखाई दे रही थी, दूसरी तरफ बहुत दूर जैसे आकाश की ओर अलग अलग प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ सितारे ऐसे थे जिनकी चमक इतनी पावरफुल थी और चारों तरफ वो स्टार्स की लाइट से सारा स्थान या विश्व पूरा जगमगा रहा था। दूसरी तरफ कुछ स्टार्स ऐसे थे जिनकी लाइट बहुत अच्छी थी, लेकिन कभी ऊपर कभी नीचे घूमती थी। और तीसरी तरफ का जो स्टार्स का ग्रुप था, उनकी लाइट गोल गोल ऐसे चक्कर लगा रही थी। और चौथी तरफ ऐसे थे स्टार्स जो कि लाइट जगमगाती हुई जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, ऐसा दिखाई दे रहा था। फिर कुछ सेकंड के बाद बाबा मेरे सामने, और बाबा भी उन स्टार्स को देख रहे थे। बाबा ने कहा, बच्ची देखा आज बाबा क्या कर रहे हैं? तो मैंने कहा, बाबा ये दुनिया तो बहुत प्यारी लग रही है, स्टार्स चमक रहे हैं, और हम इस धरती से दूर दूसरी दुनिया में आ गए हैं। बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा कि आज बाबा अपने बच्चों के जो ज्ञान सितारे भी हैं, उम्मीदों के सितारे भी हैं, और विश्व के लिए आशाओं के सितारे हैं, उन बच्चों की सारे संसार को बाबा देख रहे थे। तो बाबा ने कहा, पहले प्रकार के जो सितारे बाबा देख रहे थे वो है यज्ञ के फाउंडेशन, आधार मुहूर्त, दादियां और वरिष्ठ दादाएं जिन्होंने अपनी स्थिति को एकरस, अचल, अडोल होकर के इस कार्य को इतना मजबूत स्ट्रांग बनाया, यज्ञ के फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाया। कोई भी प्रकार के आंधी तूफान, कई बातें आई, लेकिन इस यज्ञ को आंच नहीं आने दी। तूफान आए, हवा का झोंका आया, टच करके चला गया, लेकिन कुछ भी नहीं, क्योंकि ये वो स्टार्स हैं जो बाबा के राइट हैं और यज्ञ के आधार मुहूर्त हैं। फिर बाबा ने दिखाया दूसरे स्टार्स जो ऊपर नीचे हो रहे थे। बाबा ने कहा, ये भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि जब से बाप को पहचाना तब से लेकर के सेवाओं में, प्लानिंग में तथा पुरुषार्थ में नई नए इन्वेंशन के द्वारा बाबा का संदेश, बाबा के बच्चों को भगवान के कार्य के नजदीक लाना भी इन स्टार्स ने सेवा की है और अभी भी कर रहे हैं। फिर तीसरे प्रकार के स्टार्स के लिए बाबा ने कहा, ये वो स्टार्स हैं जो बहुत सेवा के, सेवा और पुरुषार्थ के बहुत अच्छे अच्छे प्लान भी बनाते हैं, करते भी हैं, लेकिन कभी कभी इनका जो लिमिटेड दायरा है उसी दायरे में ही वो घूमते रहते हैं। जिसको बाबा कई बार कहते हैं कि विश्व की आत्माओं तक लाइट की किरणें, साकाश और आत्माओं की पुकार सुनो, उनके दुख दर्द की आवाज सुनो, उनको अंजलि देने का जो कार्य है वो कभी कर लेते हैं, कभी नहीं भी करते हैं, कभी अपने पुरुषार्थ के उधेड़ बुन में रहते हैं। फिर बाबा ने कहा, चौथे प्रकार के स्टार्स वो हैं जो जगमगाते जगमगाते हैं। बाबा ने कहा, बाबा के बच्चे हैं, बाबा से बहुत प्यार है, बाबा से बहुत शक्ति लेते हैं, लेकिन कभी कभी कई बातों में कमजोरी के संस्कार इमर्ज करके जिसके कारण माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूप जो हैं वो बच्चों के सामने आते हैं। वो रॉयल रूप इतने सुंदर होते हैं, बच्चे उस तरफ प्रभावित हो जाते हैं और वास्तविकता को भूल जाते हैं। तो बाबा ने फिर क्या किया, बाबा ने ऐसा किया, ऐसे ताली बजाई और बाबा के हाथ में एक सुंदर सा फ्लावर के बीच में स्टार चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। बाबा के हाथ में एक उस फ्लावर के नीचे एक बहुत सुंदर सी गोल्डन डंडी भी दिखाई दे रही थी। बाबा ने ऐसे घुमाया तो सभी स्टार्स ऊपर से उतर करके वतन में ऐसे पहुंचे जैसे कि सितारों की दुनिया हो। और वो बाबा के हाथ में जो स्टार की लाइट निकल रही थी, सभी स्टार्स ऐसे जगमगा रहे थे और उनकी लाइट से सारे विश्व के अंदर किरणें पड़ रही थी, विश्व के ग्लोब के ऊपर, और सारा विश्व जो है खुशी से झूमता हुआ और चारों तरफ गोल्डन रेस निकल रही थी। तो बाबा ने कहा, देखा बच्चे अपनी नई दुनिया के लिए विशेष पुरुषार्थ प्लानिंग और प्रैक्टिकल में कर रहे हैं और करना ही है, दुनिया अपनी जल्दी आनी ही है, लेकिन अब बच्चों को क्या करना है। कई बच्चे बहुत सोचते हैं, कई बच्चे कई बातों का परचिंतन भी करते हैं, कई बच्चे बाहर के प्रभाव जो लुभावने माया के रूप हैं, सुंदर सुंदर रूप, उसके रूपों में फंस करके मिस अट्रैक्ट होकर के ऐसे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने बच्चों को स्वयं को शक्तिशाली बना करके, स्वयं को संपन्न बना करके विश्व को पवित्र संपूर्ण बना के नई दुनिया लानी है, तो बच्चों को क्या करना है। फिर बाबा ने वो फ्लावर के अंदर जो स्टार चमकता हुआ था और नीचे जो गोल्डन डंडी थी वो सब बच्चों के हाथ में दिया। जैसे बच्चों के हाथ में दिया तो सब के सब देवी देवता के रूप में दिखाई देने लगे। तो बाबा ने कहा, बच्चों को सदा एक बात का ध्यान रखना है, अपनी आंतरिक स्थिति को गोल्डन बना के रखें, जिसके अंदर कोई भी प्रकार के संशय या कोई भी प्रकार के स्वभाव संस्कार जो हैं, वो जो उलझन में लाते हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। गोल्डन स्थिति मीन्स अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहें, और साथ साथ इस खुशी में कि बाबा ने हमको फिर से गोल्डन बनाया और गोल्डन स्थिति का अनुभव कराया। फिर उस फ्लावर के चारों तरफ जो पत्तियां थी, हर पत्ती के ऊपर एक एक स्टार चमकता हुआ दिखाई देता था, और वो सभी स्टार्स संपन्न स्वरूप में जैसे वो सामने विश्व के सामने आते थे, तो उन एक एक पत्ती के द्वारा, एक एक स्टार के द्वारा चारों तरफ लाइट और नई दुनिया के नजारे सामने आते थे। तो बाबा ने कहा जैसे स्थिति को आप गोल्डन बनाएंगे, उतना अपनी नई दुनिया के नजारे अनुभव अभी संगम युग पर ही कर सकेंगे। फिर वो जो स्टार दिखाया, उस स्टार के अंदर क्या दिखाया था, शिव बाबा और साथ में ब्रह्मा बाबा और बीच में चमकते हुए तीन स्टार थे। तो बाबा ने कहा बाप और दादा तो कंबाइंड हैं, लेकिन बाप और दादा अपने बच्चों के बिना कोई भी कार्य नहीं करते हैं। बाबा ने बच्चों को जिम्मेवारी दी है, बाप की सिरताज है, और बाबा ने इनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि स्वयं का स्वयं राजा बने, और जब स्वयं का स्वयं राजा बनेंगे तब ही भविष्य दुनिया के अंदर राजपद को पा सकेंगे। फिर बाबा तो बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे। बाबा ने कहा सारे क्लब के अंदर ऐसे लाडले बच्चे कहाँ मिलेंगे, कितना लाडले हैं और प्यारे हैं। बाबा को भी बच्चों को देखकर खुशी, खुशी के साथ नाज है। यही होनहार नई दुनिया के मालिक हैं। तो फिर बाबा जैसे ना होनहार नई दुनिया के मालिक कहते ही ऊपर से गोल्डन पत्तियां जैसे होती ना गुलाब की पत्तियां, उससे सबका स्वागत हो रहा था, और सबके हाथ में बाबा ने वही फ्लावर स्टार चमकता हुआ दिया, और बाबा ने कहा सदा संपन्न और सफलता मूर्त बने। और फिर बाबा को मैंने बताया कि बाबा बहुत उन्हें याद प्यार भोग के लिए कहा है। बाबा ने क्या किया, सबको इमर्ज किया। इमर्ज करते हुए बाबा दृष्टि के द्वारा सबको वरदान भी दे रहे थे। फिर बाबा को मैंने भोग सामने रखा था, बाबा ने कहा आज बाबा अपने लाडले बच्चों को पहले भोग स्वीकार कराएंगे। मैंने कहा नहीं बाबा, सब बच्चे आपको स्वीकार कराएंगे। बाबा ने कहा अच्छा कराओ। अब बच्चे जो हैं सब हाथ बढ़ा रहे हैं कि हम खिलाएं हम खिलाएं, सबके हाथ भरे हुए थे। तो बाबा ने कहा दो दो, तो सबका भोग जैसे ना बाबा के पास पहुंचा, और इतने खुश हो रहे थे कि आज हमने भी बाबा को अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया है। और बाबा ने फिर सब बच्चों को अपने हाथ से भोग स्वीकार कराते हुए बाबा ने फिर से याद दिलाया समय बदल रहा है, अपनी बुद्धि को एक रस एक स्थिति में रख करके संपन्न बनाना है, बाहरी प्रभावों के अट्रैक्शन की तरफ ना जाएं, क्योंकि समय बाहरी प्रभाव भी दिखाएगा और स्थिति को बनाने के लिए चांसेस भी बहुत दे रहा है, दोनों का स्पीड में कार्य चल रहा है। इसलिए बच्चों को विशेष ध्यान देना है। फिर बाबा ने सबको याद दिया ओम शांति।